ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ರೇ ರಾಮ ಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ reading from Srimad Bhagavatam, Skand, Pratham Skand, Tisra Adhyay, Shloka Sankhya 25. Evam Janmani Karmani Hi Akartum Hu Ajanasya Cha Upanayanti Sma Kavaya Veda Guihani Hatpate Evam Janmani Karmani Yakarturaja Nasya Cha Upanayanti Sma Kavayo Veda Guihani Hatpate Evam Janmani Karmani Akartuhu Ajanasya Cha Upanayanti Sma Kavayaha Veda Guhyani Hatpate Evam Janmani Karmani Akarturajanasya Cha Upanayanti Sma Kavayoha Veda Guhyani Hatpate
Evam Janmani Karmani
Evam Janmani Karmani
Akarturajanasya Cha
Akarturajanasya Cha
Varnayanti Sma Kavayoha
Varnayanti Sma Kavayoha
Veda Guhyani Hatpate
Evam Janmani Karmani
Yakarturajanasya
Cha
Varnayanti
Sma Kavayoha
Veda Guhyani
Hatpate
Evam Janmani Karmani
एवं इस प्रकार जन्मानि जन्म कर्माणि कर्म ही निश्चय ही अकर्तु अकर्ता से अजन्मस्य च अजमन अजन्मा के च तथा बन्नयन्ति वर्णन करते हैं स्म भूतकाल में
कवयः
विद्वान वेद गुहानी वेदों के द्वारा न जाने जा सकने योग्य गोपनीय खुद पते हैं हृदय के स्वामी के ट्रांसलेशन इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है वे यश है तात्पर्य भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक हैं अतः दोनों ही शाश्वत हैं और दोनों में से किसी का न तो जन्म होता है न मृत्यु अंतर इतना ही है कि भगवान के तथाकथित जन्म तथा तिरोधान जीवों से भिन्न होते हैं जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं लेकिन भगवान का तथाकथित प्राकट्य या तिरोधान भौतिक प्रकृति का कर्म न होकर भगवान की अंतरंग शक्ति का प्रदर्शन करते हैं प्रदर्शन है महान ऋषि मुनि इनका वर्णन आत्म साक्षात्कार का उद्देश्य से करते हैं भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके तथाकथित जन्म तथा कर्म सब दिव्य है इन कर्मों का ध्यान करने से ही मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है और भव बंधन से मुक्त हो सकता है हो जाता है श्रुतियों का कथन है कि अजन्मा भी जन्म लेता प्रतीत होता है परमेश्वर को कुछ करना नहीं होता लेकिन चूंकि वे सर्वशक्तिमान हैं अतएव हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है मानो स्वयमेव संपन्न हुआ हो तथ्य तो यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान एवं उनके विविध कर्म ये सभी वैदिक साहित्य के लिए भी परम गुह्य है तो भी ये सब भगवान द्वारा बद्ध जीवों पर दया प्रदान करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं हमें भगवान के कर्मों के अख्यानों से लाभ उठाना चाहिए क्योंकि ये ब्रह्म का ध्यान करने के अत्यंत सुगम तथा रुचिकर साधन है ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः मुखं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीचैतन्यईश्वरं परमानन्दमाधवं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त इदे नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यदेशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सभी भक्तों को भगवतम क्लास में स्वागत है भगवतम स्टार्ट होता है कि नैमिषारण्य के ऋषियों प्रश्न पूछते हैं और सुत गोस्वामी उत्तर देते हैं जो प्रश्न पूछते हैं विभिन्न प्रकार के भगवान के अवतारों के बारे में प्रश्न होता है उसके उत्तर देते रहते हैं ये तृतीय चैप्टर में आते हैं अध्याय में यहाँ पे कई सारे अवतारों के वर्णन के बाद बोलते हैं कि कई सारे अवतारों के बारे में वर्णन किया और कई सारे अवतार मैंने वर्णन नहीं किया, और ऐसा है कि भगवान के जो अवतार है वो असंख्य है, लेकिन जो अवतार के बारे में मैंने वर्णन किया कृष्ण और बलराम, ये कृष्ण वो खुद भगवान है, जिनमें से सभी प्रकार के अवतार आए हैं इनको बोलते हैं अवतारी। तो उस श्लोक में बोलते हैं एते चम स कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भले मैंने बोल दिया कि कृष्ण अवतार हैं, लेकिन वो कृष्ण खुद भगवान ही है। इंद्रिय वकुलम लोके मृणयंती चुके चुके। जब जब भौतिक संसार में कभी आसुरिक प्रवृत्ति के लोगों से भक्तों पीड़ित होते हैं, तभी तभी ये युग युग में अवतारित होते हैं रहते हैं। और आगे आगे बोलते हैं कि जन्म गुह्य भगवत ये तो प्रत्यय तो न रहो। जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सायं, सायं मतलब सुबह और संध्या, और प्रातः मतलब सुबह सुबह शाम को पाठ करता है गुणन भक्त्या दुख ग्राम उच्यते, तो वो जीवन के समस्त दुख से छूट जाता है। तो विचार करना चाहिए कि हर व्यक्ति वो भक्त हो या भक्ति में पहला कदम भी नहीं रखा हो, समस्या या दुख या क्लेश ये सभी के जीवन में अनिवार्य है। विचार कर सकते हैं कि जब देवकी और वसुदेव, उनको गोद में कृष्ण जन्म नहीं हुए थे, तभी भी ये धरती पे असुर लोगों का जो कठिनाई उठाते थे भक्त लोग, लेकिन जब कृष्ण खुद जन्म ले लेते हैं बंदी गृह में और वसुदेव जी उनको मथुरा से वृंदावन ट्रांसफर करते हैं, और वृंदावन में पहुंचने के बाद कष्ट खत्म नहीं होता है, तभी भक्त सोचते हैं कि आप हरे कृष्ण जप करो सब समस्या का समाधान हो जाएगा। वो प्रचार के लोगों को जल्दी से आकृष्ट करने के लिए वो बोलते हैं तुम ये प्रसाद खाओ जप करो बस आपका सब समस्या समाधान, आपको और का कुछ कठिनाई नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन देखा जाए कि कृष्ण के जन्म से पहले भी कठिनाई थी, समस्या थी, क्लेश थी, लेकिन जब कृष्ण जन्म हो जाते हैं और वृंदावन में चले जाते हैं कठिनाई जैसे दुगनी हो जाती है, चौगुनी हो जाते हैं। कृष्ण के नाम, भगवान के नाम जप करने से पहले भी परेशानी थी और जप करने के बाद वो कठिनाई और परेशानी वो बढ़ जाती है, लेकिन जब भक्त इसको कृष्ण के साथ रहते हैं, वृंदावन के वासी जो गोप गोपी वो विचार कर सकते थे कि कृष्ण आ गए इसीलिए हम शांति से, हम तो वैश्य लोग है, अभी हमारा काम है कृषि करना, वाणिज्य करना, हमको क्या कठिनाई उठाना है, ये कृष्ण के वजह से सभी परेशानी हमारा बढ़ गया। भक्त विचार कर सकता है अरे जब माला नहीं लिया था तो जब नहीं किया था, जब भक्तों के संग नहीं आया था कि मेरा कोई कठिनाई जीवन में था नहीं, लेकिन जब मैंने माला ले लिया तो मानो कि मेरा कठिनाई बढ़ गया। सुबह उठो, मंगल आरती करो, जप करो, अरे कभी बटाटा बड़ा समोसा भी नहीं खाना मिलता है बाहर, विचार कर सकता है। कठिनाई तो और भी बढ़ जाती है, पर घर वाले भी परेशान करते हैं, घर वाले बोलते हैं क्या दिन भर जप करता रहता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और कुछ नहीं है क्या, टीवी में सीरियल भी नहीं दिखता है। लेकिन विचार करना चाहिए कि कृष्ण हमारे हृदय में जन्म लेने से पहले कठिनाई थी, वो दूसरे तरीके से थी, अभी कृष्ण जन्म ले लिए हैं, अभी हम गुरु वैष्णव के कृपा से हमको भगवान का नाम लेने के लिए कुछ प्रेरणा प्रदान हुआ है, तो हम इसका लाभ उठाना चाहिए कि हम कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए कि हमें ये मनुष्य जन्म में चांस मिला है भगवान का नाम लेने के लिए। ताकि यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं दुख ग्राम मुच्यते, तो वो जो समस्त दुखों से छूट जाती है और दुख का जो समस्या का डेफिनेशन ऐसे हम टेक्निकली करना चाहे तो ऐसे डेफिनेशन मतलब समझते हैं ना कि व्याख्या करना चाहे तो उसको तीन लाइन में हम शॉर्टकट में बता सकते हैं। दुख ऐसी है कोई चाहता नहीं है, पहला दुख ऐसी है कि सबको मिलती है, कोई चाहता नहीं लेकिन मिलता है और कोई इसको अवॉइड ही नहीं कर सकता है। दुख का परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि किसी को चाहिए नहीं लेकिन उसको मिलता है और कोई चाह के भी उसके छुटकारा नहीं पा सकता है। और कृष्ण बोलते हैं ये भागवतम में सुध गोस्वामी बोलते हैं कि जो सुबह और शाम भगवान का नाम लेता रहता है उनके जन्म गुह्य, जो गुह्यतम जन्म के बारे में जान लेता है और सुबह शाम उसका पठन या श्रवण या कीर्तन करता रहता है तो उसको वो क्या करता है जन्म मृत्यु के चक्कर से सभी प्रकार के दुख से छुटकारा पा जाता है। आगे आगे सुत गोस्वामी उसको पढ़ाते रहते हैं, वो बोलते हैं कि बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छित है और वायु धूलिमय है मलिन है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर को धारणाओं के आरोपण करते हैं। मानो कि सूर्य का प्रकाश, सूर्यदेव का प्रकाश इतना उज्ज्वल है कि हम इतना अलोक होता है कि हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आप मानो कि 25 पेस का एक कॉइन कितना छोटा है और सूर्यदेव कितने बड़े हैं, लेकिन अपने आंख के बहुत नजदीक आप लेके जाएंगे, एक आंख बंद करो एक आंख के पास नजदीक नजदीक लेके जाओ तो दूर से देखेंगे सूर्य देखते हैं, धीरे 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 आएंगे तो नजदीक लाएंगे तो क्या होगा कि सूर्यदेव ही ढक जाएंगे। अपना समस्या और दुख और क्लेश को हम इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं ताकि जन्म मृत्यु वाला चक्कर वाला जो दुख है वो ढक जाता है या 25 पैसे वाला कायन वो बाकी सब समस्या है वो जन्म मृत्यु वाला समस्या को ढक देता है। और यहाँ पे शरीर और आत्मा के बारे में प्रभुपाद यहाँ पे डिटेल्स में बताते हैं, वो बोलते हैं कि अल्पज्ञ जिनके पास बुद्धि है जो रसकल्स है वो खाली सोचते हैं कि हम यही शरीर है, आगे है उनका विचार होता ही नहीं। तो ये समस्याएं जो है सभी के जीवन में समस्या आता है और भक्तों के जीवन में जब समस्या आता है और उसको प्रभुपाद बोलते हैं ये प्रचार में एक चुनौती के जैसे है। तो मैं जस्ट इसको जस्ट पढ़ रहा था तो पॉइंट्स नोट कर रहा था। समस्या समाधान करना का अर्थ यह है कि भक्ति में परिपूर्णता लाना। परिपूर्णता अर्थ क्या है कि हमें ये मनुष्य का जन्म मिला है तो हमें ये भव संसार से छुटकारा लेना है और छुटकारा लेना एक सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी क्या है गुरु के वाक्य को चित्ते करिया ऐक्य एक ही चित्त में बैठाना चाहिए कि गुरु के वाक्य जो प्रभुपाद बोले हैं कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जारे जिसको भी देखो प्रचार करो। प्रचार में जो समस्याएं आती हैं उसको हम जो समस्याओं को हम बोल सकते हैं कि कृष्ण जानबूझ के हमको टेस्ट करने के लिए वो सब समस्याएं भेजते रहते हैं। तो समण कृष्ण गोस्वामी जब प्रभुपाद के साथ आए बॉम्बे जुहू का लैंड खरीद चुके थे, अभी जमीन ले लिए, कभी उधर कुछ कोई एक कुछ कई एकड़ों का आबादी था और पूरा जनबसती शून्य था। प्रभुपाद बोले अभी समण कृष्ण और जितने भी भक्त थे सबको बोले आप वहां पे जाके रहो और साफ सुथर करके वहां पे अपना एक सेंटर स्टार्ट करना है। समल कृष्ण गोस्वामी तुरंत जवाब देते हैं प्रभुपाद वी आर फ्रॉम वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कि हम पाश्चात्य देश से आए हैं और हमको स्विच दबाओ तो लाइट चाहिए, टैप खोलो तो नल में पानी चाहिए और आप बोलते हो उधर गंदगी में जाके रहने के लिए। प्रभुपाद उनको बोलते हैं कि आपको शुद्ध होना है कि नहीं, डू यू वॉन्ट टू बी प्यूरिफाइड, बस एक ही स्टेटमेंट में सब समझ जाते हैं। तो कठिनाई और समस्याएं अपने जीवन में आती है तो गुरु के वाक्य को जीवन में एक ही बना के आगे प्रचार में बढ़ना चाहिए। तो एक शिष्य थे प्रभुपाद के, उन्होंने बोले मैंने सेवा करती हूँ, अभी मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग इतना अच्छा सेवा करने के बाद मेरे बारे में समालोचना करते हैं। कभी कभी हमको भी लगता है कि हम इतना अच्छा काम करते हैं, जप करते हैं, सेवा करते हैं, मंदिर आते हैं, किचन में सेवा करते हैं, सब्जी कटिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, फिर भी हमारे बारे में क्यों इतना समालोचना होता है। तो प्रभुपाद तो वो बोलते हैं कि प्रभुपाद मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ, अभी इस्कॉन छोड़ के निकलना चाहता हूँ। प्रभुपाद उनको बोलते हैं देखो ये संसार ऐसा ही है, कहीं पे भी जाओ ईर्ष्या का पत्र बनते रहते हो, वेदर विथ डिवोटीज और नॉन डिवोटीज, कहीं पे भी जाओ ये चीज हर जगह पे रहने वाला है। आप संसार में जो शांति की खोज में आए हो, ये दुनिया में शांति का स्थान नहीं है, और भगवान ये संसार में आते हैं क्योंकि ये जो संघर्षमय स्थान है यहाँ पे कुछ मानो कि एक करोड़पति अमेरिका में पश्चिम देश में ऐसा होता है, करोड़पति जैसे लोग रहते हैं और उनको लगता है यार एक जब मुंह खोलो तो नौकर चाकर आ जाते हैं, पानी दे देते हैं, खाना परोस देते हैं, ड्राइवर आ जाते हैं, गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं, मजा नहीं आता है। तो ये संघर्षमय जब संसार में भगवान भी ऐसे ही आते हैं तो वो करोड़पति क्या सोचता है, अभी कंटल गया हूं, अभी विरक्ति आ गया, थोड़ा बाहर की दुनिया क्या है थोड़ा मजा लेते हैं, भीकर ही रहते हैं तो कैसे रहते हैं। तो कई सारे ऐसे करोड़पति क्या करते हैं, भिखारी बन के छतम देश में जाते हैं भिक्षा करने के लिए, भीख मांगने के लिए। तो वो देखते हैं कि बाहर के जो ओरिजिनल भिखारी है ना डुप्लीकेट भिखारी को भगा देते हैं, बोलते हैं तुम हमारे एरिया में क्या कर रहे हैं, बोलते हैं आपस में विचार बोलते हैं कि देखो वो हमको जानता नहीं इसीलिए बोलता है कि। तो भगवान भी कभी ये संसार में आते हैं तो बाकी लोग सोचते हैं वो शायद हमारे जैसे ही है, तो हम जैसे पीड़ित रहते हैं और कर्म के बंधन में बंधे हुए रहते हैं, तीन गुणों में पिसते रहते हैं, इसी प्रकार से वो भी ऐसे ही हैं। और वो करोड़पति कभी कभी आपस में बैठ भी मारते हैं, चलो आज भीख मांगने जाते हैं तो कौन सबसे ज्यादा भीख कमाएगा, भीख मांग के लायक। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो संघर्ष अपने जीवन में आते हैं ये भगवान के भक्ति में चरम जो पराकाष्ठा दिखाने के लिए आविर्भाव होते हैं हमारे हृदय में। और जो दसम स्कंद के पहला चैप्टर में जो 13-14 श्लोक है कि परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि सुखदेव गोस्वामी को कि उसको हम तीन चार स्टेप में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला बोल सकते हैं कि साधक के जीवन में साधना का महत्व क्या है। तो हमारे जीवन में साधना हम करते हैं तो ये सारे समस्याओं के साथ जो साधना करना है, साधना का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। दूसरा ये जो समस्या आती है तो ये प्रचार के संबंध में समस्या का बारे में देख सकते हैं। तीसरा सेवा सारे के सारे ये सब क्रिटिसिज्म के साथ, ये जो आपस में जो द्वंद्व द्वेष अंदर लेके जो सेवा संबंधित समस्या है उसको हम देख सकते हैं। और चौथा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए गुरु के आश्रय लेने का महत्व, तो इसको ऐसे हम देख सकते हैं कि जो प्रभुपाद जो तात्पर्य लिखते हैं वो सब लिखते हैं ठीक रात के 1 से सुबह 4 के बीच में, जो कि हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण समय है। और ऐसा वो स्लॉट है कि जो वो स्लॉट में किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, भले आप मानो कि थोड़ा लेट हो गया, हम विचार कर लेते हैं अभी माइंड को ऐसे स्थिर कर देते हैं कि कल सुबह तुझे एक घंटा एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा, लेकिन प्रभु का उस समस्याओं को, हमारे समस्याओं को, समस्या से हमको उद्धार करने के लिए वो खुद समस्या उठा के, मानो कि जैसे हम प्रसाद बना रहे हैं और मार्केट में जाते हैं, सब्जी लाते हैं, कटिंग करते हैं, धुलाई करके पकाते हैं और भोग लगा के लाके चम्मच डाल के प्लेट सामने रखते हैं और बोलते हैं खाओ। प्रभुपाद बोलते हैं कि अभी सब तैयार है, अब जस्ट पढ़ो। और यहाँ पे उस श्लोक में क्या बोले कि जो सुबह और शाम उसको पठन करता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, वो ये दुख से छुटकारा पा जाता है। तो परीक्षित महाराज कई सारे प्रश्न पूछते हैं, इस श्लोक इधर पूछते हैं कि इसको कई सारे श्लोक को जो पूछे हैं उसको हम चार भाग में विभक्त कर सकते हैं। कि पूछते हैं कि मैं क्यों सुनना चाहता हूं, चार प्रश्न है ऐसा कि मैं कृष्ण के, भगवान के ये भौतिक संसार में आविर्भाव होने के पीछे जो रहस्य है उसको मैं क्यों सुनना चाहता हूं। तो बोलते हैं अवतीर्या यदुर्वंशे भगवान भूत भावन मतलब सभी जीवों के प्रिय है, प्रियतम है। तो हम कोई व्यक्ति को बोलते हैं ये मर मेरा अत्यंत प्रिय है, लेकिन कुछ कटु वाक्य के वजह से हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये इसके साथ मेरा अभी नहीं जम रहा है। लेकिन भगवान इतना सारे विदाउट एनी मेंटेनेंस भी पूरा प्रोवाइड करते हैं, मानो कि दिन में सूर्यदेव का प्रकाश, पानी, प्रसाद, इस सब कुछ देने के बाद और लोग क्या बोलते हैं ये भगवान करके कोई है नहीं। लेकिन इसलिए बोलता है कि मैं भगवान के बारे में क्यों सुनना चाहता हूं, क्योंकि वो भूतभावन है, प्रत्येक जीव के प्रति प्रेम है उनके हृदय में और सभी जीव के अंदर भगवान के प्रति सेवा करने का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, गुण है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण र नित्यदास। लेकिन हम इतने कलुषित हो चुके हैं भौतिक संसार में ताकि हमें भगवान के प्रति प्रेम है नहीं। तो सेकेंड बोलते हैं तो भले अवतीर्य यदुर्वंश से भगवान भूतभावन है, लेकिन हमारे प्रति, हमारा जो हृदय में उनके प्रति अनुरक्ति नहीं है, उनके प्रति प्रेम नहीं है। तो दूसरे प्रश्न में बोलते हैं कि प्रेम नहीं है तो क्या है, तो थोड़ा तो डरो तो, आगे चल के तुम्हारे पास जो व्याधि है, अपने अंदर जो कष्ट है, जिसके वजह से, रोग के वजह से आप सड़ रहे हो, किस प्रकार के रोग, न भव रोग है। तो बोलते हैं कि भगवान एक डॉक्टर के जैसे हैं, वो क्या करते हैं उनके नाम रूपी का औषध प्रदान करते हैं, बोलते हैं इसीलिए मैं इनके बारे में सुनना चाहता हूं। बोलते हैं निवृत्त दर्शन उपगीय माना भव औषधि सूत्र मनोभिराता राम। तो मैं किस प्रकार से औषध लेता हूं, लेना चाहिए मैं कान के, कर्ण के रंध्र के द्वारा मैं वो श्रवण करके वो औषध ग्रहण कर। लेकिन ये भौतिक संसार में जिस पर जितने सारी औषधियां हैं, अपने मानो मलेरिया हुआ कोई नन लिए तो क्या कड़वा लगता है, लेकिन ये जो भगवान के नाम रूपी औषधि है ये किस प्रकार है, मनो अभिराम, मन को मनोरंजन प्रदान करने वाला है, इसलिए मैं सुनना चाहता हूं। कह उत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरचित बिना पशुनाथ। जो पशुनाथ है, जो पशु बध करते हैं, जिनको अपने इंद्रिय तृप्ति करने के लिए सारे के सारे तैयारी जीवन भर करते रहते हैं, और पहले जमाने में पशु बलि होता था यज्ञ में, ताकि क्या है वो ये नीचे वाला धरती का संसार से जाके स्वर्ग लोक सुख प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा बोलते हैं जो अपने इंद्रिय और आत्मा और शरीर के अंदर पार्थक्य नहीं समझते हैं और भगवान के साथ उनका संबंध नहीं समझ सकते, वो पशुगनाथ भी होते हैं। और थर्ड में बोलते हैं क्यों, पहला बताए कि वो सबके प्रेमी है, द्वितीय में बोलते हैं कि ये भगवान जो है एक डॉक्टर है, हमको हरिनाम रूपी उनका नाम गुण श्रवण कीर्तन करने के लिए वो प्रदार्पण होते हैं, और थर्ड में बोलते हैं कि भले रोग हुआ लेकिन फिर भी मेरा उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, आगे तो चल के मृत्यु तो आने वाला ही है, रक्षा करने वाले हैं, और रक्षा कौन करने वाला है, भगवान ही करने वाले हैं। परीक्षित महाराज बोलते हैं, स्मरण करते हैं कि अभी मेरे 7 दिन से 4 दिन ऑलरेडी बीत चुका है, 9000 श्लोक खत्म हो गया, अभी 9000 श्लोक बाकी है, आप ये मत सोचो कि मैं भूल गया हूं, अभी अल्टीमेटली जो प्रोटेक्शन देने वाला है वो भगवान श्री कृष्ण का नाम और गुण उनका लीला ही दे सकता है, भगवान कृष्ण ही, जो कि मेरे दादाजी अर्जुन को अपने रथ के ऊपर अविष्ट होके चैरियट ड्राइवर के रूप में उनको पूरा रक्षा प्रदान किया, और मैं जब जन्म से पहले माता के गर्भ में उत्तरा के गर्भ में था, तभी जब मेरे माता भाग भाग के आई कि कृष्ण कृष्ण महाबहु जो कौन सा है वो बोले महायोगिन, हे भगवान आप तो सबके प्रोटेक्टर हैं, मुझे रक्षा मत करो लेकिन मेरे जो गर्भ में जो मेरे संतान है उसका रक्षा करो, तो बोलते हैं ठीक है तभी मेरे रक्षा किए थे तो अभी मेरा रक्षा नहीं करेंगे क्या, तो वो उनका विचार ये था, इसीलिए मैं उनके बारे में सुनना चाहता हूं। अभी चौथा बोलते हैं कि जिस प्रकार सभी प्रकार के सिचुएशन में डालने वाले भगवान श्री कृष्ण ही है, 3 डिस्क्रिप्शन दिए थे क्योंकि क्यों मैं सुनना चाहता हूं, पहला प्रेमी है, दूसरा है डॉक्टर है, तीसरा है प्रोटेक्टर है, चौथा है बेस्टोर है, तो हम क्यों सुनना चाहिए, क्योंकि वो जिस प्रकार भी स्थिति में रखे ताकि हम कृष्ण के बारे में स्मरण कर पाए। तो बोलते हैं कि जितने भी गोपियां हैं वो बोलते हैं क्या कि गोपी गीत में बोलते हैं कि तब कथा अमृतम तप्त जीवन कभी ये वृंदितम कौन सा है वो सीम आपदम भूरी गुणंती भुजे भूरी दादन, जो कृष्ण की कथा जो है तब कथा अमृतम, तो आपके जो कथा है आप कहा हुआ कथा या आपके बारे में जो कथा है भगवत गीता हो या भागवतम हो कि अमृत है, अमृत तुल्य है, ये इसको ग्रहण करेंगे तो कोई मृत्यु का कोई शंका मात्र नहीं है, इसीलिए बोलते हैं कि और गोपी जो है वो बोलते हैं कि भले ही वो अमृत है लेकिन हमारे लिए मृत्यु जैसा है, जब हम उनको इंटेंसली ग्रहण कर लिया, भगवान का कृष्ण हमारे जीवन में सब कुछ है मान लिया, तो ये हमारे लिए मृत्यु जैसे हो गए, हम तो मृत्यु जैसे प्राय हो गए क्योंकि उनके बिना हमारा हाथ पैर चलता ही नहीं, उनके दर्शन के बिना हमारा आंख का पलक पड़ता ही नहीं, और ये जो सिचुएशन क्रिएट कौन किया है कि कभी जो कथाकार है ये सब सुनाते रहते हैं, इसीलिए ये और ये कथाकार कथा करने के लिए ये जो सिचुएशन कौन बनाता है कि श्रीमत जो जिसके पास ऐश्वर्य है श्री है धन संपत्ति है ये लोग ये सब करते हैं, क्यों, क्योंकि घूरी घृणता जो भूरी राजन तप्त जीवन का अर्थ ऐसे सोच सकते हैं, जीवन का अर्थ जल है, तप्त है तेल को पूरा अच्छी तरह गर्म कर दो उसके ऊपर एक पानी छिड़का दो क्या होगा वो जैसे ब्रश करेगा ना ऊपर आ जाएगा, तो हमारे जीवन ऐसा ही है कृष्ण के बिना, तो इसको व्यास स्तुति जैसे बोल सकते हैं, और कृष्ण की कथा जो है अमृत है, तो यहाँ पे कृष्ण बोलते हैं प्रश्न पूछने के बाद बोलते हैं 4 प्रश्न जो था मैं क्यों सुनना चाहता हूँ, ये पहला प्रश्न में 4 उत्तर देते हैं कि मैं इसलिए सुनना चाहता हूँ कि कृष्ण मेरे प्रिय हैं, कृष्ण मेरे डॉक्टर हैं, कृष्ण मेरे प्रोटेक्टर हैं, रक्षक हैं, कृष्ण मेरे सभी प्रकार संबंध स्थापन करने के लिए जिस प्रकार का परिस्थिति वो प्रदान करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन है पूछते हैं क्या सुनना चाहता हूँ, व्हाट आई वॉन्ट टू हियर अबाउट इट, तो मैं क्या क्या सुनना चाहता हूँ। वो बोलते हैं कि मैंने सुना है कि कृष्ण के जन्म जो है वो बहुत रहस्यमय है, ये इधर वेद के द्वारा भी कृष्ण के बारे में, जन्म के बारे में कोई जानना नहीं सकता है, तो केवल भक्त भी समझ सकता है। तो पूछते हैं, सुना मैंने कृष्ण उनके जन्म लेने के मात्र ही तुरंत उनके माता पिता को छोड़ के, उनके घर छोड़ के तुरंत वृंदावन चले गए, और वहां पे वृंदावन में जदुकुल में जन्म लेकर वो गोकुल में रहते हैं कौवड़ भाई के हिसाब से ग्वाला रूप में, और उनके जो रिलेटिव वृंदावन में है उनके साथ रहते हैं, और वो कैसे क्या उधर क्या कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। और बोलते हैं कि जो उनका भ्रातर चावहित कंस मातुर अहर्णम, तो बोलते हैं कि वृंदावन में कृष्ण वृंदावन में भी रहे और द्वारका मथुरा में भी रहे, तो रहे तो क्या किया उधर, उधर रहने के पीछे रहस्य क्या है। और वहां पे सुना है कि मामा जो कंस था देवकी के भ्राता, तो जो कि शास्त्र के विरुद्ध है, मामा को मारना मतलब शास्त्र का विरुद्ध है, मामा और भांजा का रिलेशन थोड़ा कुछ ऐसा घनिष्ठ होता है, मामा खिलौना भेजता रहता है, और वृंदावन में गए तो वो कई कई प्रकार के, कभी बकासुर भेजा तो वो तो कई अघासुर भेजा, तो उनको स्काई राइडिंग करने इच्छा तो द्रोणावर्त को भेज दिया, तो ये सब सिचुएशन में भेजा, तो बोले कि उस वो सब राक्षस को, वो सब खिलौना को तोड़ दिए, और तोड़े तो तोड़े मामा को ही तोड़ दिया अंतिम में, तो बोलते ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये बड़ा रहस्यमय है। तीसरा बोलते हैं कि मैंने सुना था भाई जो जन्म के बाद थोड़ा बड़े होने के बाद उनके थोड़ा झगड़ा होता है, लेकिन माँ के गर्भ से आने से पहले भाई को ट्रांसफर कर दिया रोहिणी के गर्भ में, रोहिणी माता के गर्भ में, तो झगड़ा तो होता होता, ऐसा क्या कठिनाई आ गया कि भाई को ही बोले तू इधर घर छोड़। तो बोलते हैं चौथे में कि मैंने सुना है वैवाहिक जीवन में व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए, एक पत्नी व्रत लेके श्री रामचंद्र आए, लेकिन इधर देखो भगवान श्री कृष्ण आते हैं, क्या रहस्य है उनके जीवन में, और शादी तो करते हैं कि एक नहीं दो नहीं, मतलब आप गिन नहीं सकते हो इतने पत्नियों से शादी की, और उनको खुद उनको भी संतुष्ट की खुद भी संतुष्ट रहे, ये बड़ा रहस्यमय है। और बोलते हैं किस तरीके से मैं सुनना चाहता हूं, पहला हो गया मैं क्या क्यों सुनना चाहता हूं, अभी बोल दिया कि क्या क्या सुनना चाहता हूं, क्या रहस्य है इसके पीछे। तीसरा बोलते हैं कि किस तरीके से मैं सुनना चाहता हूं, बोलते हैं वक्तुम अहर्षि शुद्ध धान विस्तृत, मतलब आप ये मत सोचो कि मेरे को प्यास लगा तो मैंने समीक ऋषि के गले में मृत सर्प का गले में डाल दिया और उनका पुत्र मुझे अभिशाप दे दिया, 7 दिन में मुझे दंशन करने वाला है तक्षक। ये सिचुएशन आने के बाद आप ये मत सोचिए मैं ये खुदा तृषा को, कष्ट को, समस्या को उठा नहीं पाया था, ये जो समस्या है खिदा और तृषा ये सबसे बड़ा समस्या है। एकादशी होता है तो मानो कि दूसरे दिन जपमाला उठाना भी कठिन पड़ जाता है, लेकिन ये सिचुएशन में आप उधर वहां पर प्रश्न पूछते हैं कि सुखदेव गोस्वामी आप मुझे ये बताएं कि अभी 4 दिन बीत चुका है, ये मत सोचिए कि जो मुझे भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, आप ये मत सोचिए, आप विस्तार रूप में बताइए, अच्छी तरह बताइए, और क्या बताइए, मैंने जो प्रश्न किया हूं, जो नहीं किया हूं, और मेरे चरम मेरे जो भौतिक इंद्रियों के सूक्ष्म बुद्धि के हिसाब से मैं जो प्रश्न पूछा हूं, कुछ प्रश्न पूछा हूं थोड़ा बहुत, लेकिन कई सारे प्रश्न है जो मैं पूछा भी नहीं हूँ, लेकिन आप तो सर्वज्ञ हैं, आप मुझे बताइए। मैं जो जानता हूँ, जो प्रश्न पूछा हूँ, जो प्रश्न नहीं पूछा हूँ, सभी के बारे में विस्तार रूप में बताइए। और चौथा में बोलते हैं, कहाँ मैं सुनना चाहता हूँ, कभी कब कब मैं सुनना चाहता हूँ, व्हेन शुड आई हियर। वो बोलते हैं, पिबंतम तब मुखा द्रवम च्युत हरि कथा अमृतम। तो हरि की कथा जो है अमृत के जैसा है, और जब मैं आपके मुंह से ये श्रवण करता हूँ, ये मुझे कुछ क्षुधा तृषा का कष्ट नहीं देता। मैं कई जन्मों तक इधर बैठ के श्रवण कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कोई बोल सकता है, कृष्ण आए कई सारे अवतार लेके, मानो कि एक मछली के रूप में आए, कुर्म के रूप में आए, कई सारे अवतार लिए, लेकिन व्यक्ति को क्यों उसके प्रति इतना आसक्त। वो हाँ ठीक है, कभी कभी थोड़ा मन में आता है नरसिंहदेव के लड़ा थोड़ा थोड़ा हमको, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ा हिंसा का भावना है, तो नरसिंहदेव के प्रति थोड़ा आसक्त रहता है, थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में उनके लीला के बारे में। लेकिन इधर चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, जगन्नाथ बोलते हैं, कृष्ण रजते का लीला सर्वोत्तम नर लीला। जो नर के रूप में लीला किए कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, ये जो लीला है सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम नर लीला। गोप वेश वेणु करे नव किशोर नटवर। तो गोप के रूप में, जो ग्वाल के रूप में आए, जो लीला किए, और नव किशोर नटवर के रूप में आए, नर लीला हुए अनुरूप। तो ये जो नर लीला है, ये सबके हृदय को आकृष्ट करता है, इतना आकृष्ट करता है कि सबके हृदय में कलमश दूर करता है और उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है। और ये अमृत रूपी लीला सबको दुख और कष्ट से आगे बढ़ा देता है। तो जो कंस अभी देवकी और देवकी का शादी हो जाता है, हो जाने के बाद अभी 5 मिनट है, 5 मिनट में खत्म करता हूं। देवकी के शादी हो जाने के बाद यहाँ पे कंस उसे भाई लेके जाते हैं युद्ध। ये सब स्टोरी सबको मालूम है, जस्ट इसमें से क्या शिक्षा है। अभी कंस जो है, कंस रूपी बहुत सारे बाधाएं अपने साधक के जीवन में आती हैं। जैसे कि आप मानो अभी आकाशवाणी हो चुका है, अरे मूर्ख कंस, अभी तुझे मालूम नहीं है, तेरे जो भगनी के साथ तुम अभी खुशी से लेके जा रहा है, उनके गर्भ में जो 8वीं संतान आने वाला है, ये तुम्हारा का मृत्यु का कारण बनने वाला है। तो यहाँ पे हम विचार कर सकते हैं कि जो वसुदेव हैं, वो एक भक्त हैं, जिनके साथ भक्ति उनके हृदय में जो है, भक्ति रूपी देव के साथ में है, और कंस रूपी समस्या है भी सामने है। एक क्षण में कंस बाएं हाथ में उनके बाल ले लेते हैं, और दक्षिण हाथ में क्या लेते हैं, तलवार ले लेते हैं। एक क्षण में गर्दन अलग होने वाला है, लेकिन वहां पे जो वसुदेव भक्त साधक क्या करता है, प्रयास करता है कि भले मेरा भक्ति अभी मरने वाली है, अभी जीवन में समस्या तो रहने वाली है, लेकिन मुझे कैसे उसको बचाना है। यहाँ पे बोलते हैं कि वसुदेव कई सारे इस श्लोक में यहाँ पे बताते हैं कि देख कंस, आप इतने बड़े राजा हो और सेन वंश के बहुत बड़े राजा हो, और आप एक नारी का वध करने जा रहे हो। यहाँ पे क्या करते हैं, उसको पैसिफाई करने के लिए चाहते हैं, उसको संतुष्ट करना चाहते हैं। कभी कभी प्रचार में कई सारे बाधाएं आती हैं, सामने सामने आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाओ तो घर दरवाजा, आजकल तो दरवाजे में होल रहता है, देखते हैं वो छोड़ते नहीं भी अंदर। और डिवोटीज तो साथ में कोई पैंट शर्ट वाले को, बाल वाले को लेके जाते हैं, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, दरवाजा खोलो तो सफरन वाले घुस जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डिप्लोमेसी तो कूटनीति का प्रयोग करते हैं वहां पे। तो पहला स्टेप क्या रहता है, कूटनीति प्रयोग करते हैं, डिप्लोमेसी से उसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं। एक अंश आप जो कर्म करने जा रहे हो ये बहुत श्लाघनीय है, ये आप आपका कीर्ति को अकीर्ति करेगा, आप इसको मरना सही नहीं है। मेरा तो वो विचार कर सकते थे कि मेरा तो अभी 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 कोई दो मिनट पहले शादी हुआ है, संग भी नहीं हुआ है, पत्नी कौन है मेरे जानता भी नहीं, अभी दो दिन पहले मेरे से माला दिया है, अभी तो समस्या आ गई, माला साइड में रख देंगे तो समस्या समाधान, दूसरा गुरु ग्रहण कर लेंगे तो हमारे जीवन में सारे समस्या समाधान हो जाएगा, और ये पत्नी को छोड़ देता हूँ, दूसरा पत्नी ग्रहण कर लूंगा, विचार आ सकता है साधक के भक्त में जीवन में। लेकिन बोलते हैं कि कम ये तुम गलत काम मत करो, कूटनीति का प्रयोग करते हैं। श्लाघनीय गुण सुरेर भवान वज यशस कर, तुम्हारा जो यश है, तुम्हारा जो महिमा है, ये सब पानी में मिल जाएगा, तुम ऐसे मत करो। स कथम भगिनी हत्याम, तुम भगिनी का हत्या करोगे, एक नारी है अबला है जो शास्त्र के विरुद्ध है, आप ऐसे करना, और पर्टिकुलरली उसके विवाह के दिन में आप उसको मृत्यु दंड दे रहे हो, और उसका तो कुछ गलती ही नहीं है, ये तो आकाशवाणी क्या है, वो सच हो सकता है गलत हो सकता है। दूसरे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि कैसे दूसरे बार स्पेसिफाई करना चाहते हैं तर्क के द्वारा। साधक के भक्त में जीवन में कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं कि भगवान नहीं है, कभी कभी उनके जीवन में कई सारे समस्याएं आती है जो तर्क के द्वारा उसको समाधान करना चाहिए, तो लॉजिक यूज करते हैं। बोलते हैं तो कम से ये मृत्यु जो है ये जन्म के साथ फुल पैकेज में आता है, तो आप जन्म लिया तो साथ में मृत्यु हुआ है, आगे चलो तो हर क्षण में आपका मृत्यु आपके पीछा कर रहा है, आज नहीं तो कल मरने वाले हो। तो यहाँ पे तर्क के द्वारा वो प्रतिष्ठा करना चाहते हैं कि देखो मृत्यु जन्म तुम वीर देहे न सह जायते, तो जन्म के साथ देह के साथ शरीर के साथ मृत्यु जोड़ा ही है। बोलते हैं वो ग्रेट हीरो नो वन टेक्स बाथ इन श्योर टू डाई, कोई भी वीर जन्म लेता है तो मरने के लिए ही लेता है, फॉर डेथ इज बर्न विद द बॉडी, शरीर के साथ मृत्यु आ ही जाता है पैकेज के साथ, वन में डाई टूडे और आफ्टर हंड्रेड ऑफ इयर्स, आप अभी मरो या तो हजार साल के बाद मरो लेकिन मरना ही है, तो प्रत्येक जीव के लिए मृत्यु अनिवार्य है, ये तर्क के द्वारा प्रतिष्ठा करते हैं। तो इस तरह कभी कई सारे तर्क अपने जीवन में भी आती है, तो बोलते हैं तुम प्रचार क्यों करते हो, हर दिन हरे कृष्ण करने का और कुछ है नहीं जीवन में, तो भक्तों को शास्त्र से निपुण होना चाहिए ताकि कोई भी किसी प्रकार की तर्क आए सामने हराना चाहिए। कई सारे मुस्लिम लोग प्रश्न करते हैं तुम लोग विग्रह का पूजा क्यों करते हो, फर्म का पूजा क्यों करते हो, हम तो फर्मलेस पूजा करते हैं, उनका कोई शरीर नहीं है, तो उनको पूछना चाहिए तुम अपने गिरजा या कहीं पे जाते हो तो प्रार्थना तो करते हो, अल्लाह अकबर बुलाते हो, तो आप विश्वास करते हो अल्लाह आपका सुन रहे हैं ना, हाँ सुन रहे हैं, तो सुन रहे तो उनका कान तो है ना, खाली है हवा में ऐसे कान टंगा हुआ है और आप प्रार्थना कर लिए सुन लिए। तो तर्क के मतलब ये है, एक यूडीसीटी में हम इंजीनियरिंग पढ़ने के टाइम तो तर्क वितर्क ऐसे चलता रहता है, ये आ गए झूला बाबा, तो मेरे एक दोस्त थे सिंहद्वार प्रभु करके, तो एक बैग रहता था तो प्रचार करने के लिए जब प्रोग्राम रहता था वो जाते थे बुलाने के लिए, तो उनको देख के सब भाग जाते थे, वो बुलाते थे चलो चलो प्रोग्राम चलो प्रसाद आज अच्छा है, तो बोलते नहीं नहीं, वो उनके साथ थोड़ा आर्ग्यूमेंट करते थे। तो तर्क जो है, एक प्रभुपद भी ऐसे तर्क करते थे, कई सारे साइंटिस्ट भी आते थे तर्क करने के लिए, बोलते हैं कि प्रभुपद को पूछते हैं आप बोलते हो कि सूर्यदेव जो है पृथ्वी के नजदीक है, तो प्रभुपद बोलते हैं हाँ, तो कैसे आप बताओ मुझे संडे जो है मंडे से पहले क्यों आता है, तो सर खुजलाते रहते हैं वो साइंटिस्ट लोगों को समझ में नहीं आता है, बोलते हैं जब हार के चुप हंसते हंसते आ जाते थे तो उनके जब प्रभुपाद के शिष्य लोग मिलते हैं, बोलते आपका जो ये स्वामी जी है कुछ अद्भुत है, उनके साथ जब बात करते हैं ना, हम उनके पास, हमारे पास कुछ प्रश्न का उत्तर ही नहीं रहता है, लेकिन वो हरा देते हैं हमको। तो कहने का मतलब है प्रभुपाद तर्क में बहुत निपुण थे। और थर्ड में बताते हैं, सिद्धांत सिखाते हैं, फिलोसफी में बताते हैं कि कंस को देखो, अभी आत्मा जो है सनातन है, उसका कोई मृत्यु नहीं है। आपका भले आपका मृत्यु हो गया, लेकिन इसका कोई मृत्यु नहीं है। तो एक मर्द शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ले लेते हैं, तो सेवा में जो बाधा आता है वो ऐसे साधक को उसको आगे बढ़ना चाहिए विचार करके। कोई समझ सकता है कि मुझे सेवा मिला है कि प्रचार में, तो चैतन्य चरितामृत में, गुरु लीला में आप देखेंगे कि अभी नित्यानंद प्रभु को बोल दिया बंगाल में प्रचार करो, और रूप सनातन गोस्वामी को बोले अब जंगल में जाओ और जितना सारे ग्रंथ का रचना करो, और उधर जितना सारे तीर्थ स्थान है उसको प्रकट करो। लेकिन रूप सनातन गोस्वामी ये नहीं सोचे कि देखो महाप्रभु भी, नित्यानंद प्रभु नजदीक है तो उनको भेज दिया, अच्छा जगह दे दिया प्रचार करने के लिए, लेकिन हमें भेज दिया तो जंगल में मंगल करने के लिए, मच्छर मारो इधर तकलीफ उठाना पड़ता है, समस्या है रहती है। तो इसलिए भक्तों के हृदय में दृढ़ता, जिसको बोलते हैं निश्चय, वो होना बहुत जरूरी है। तो डिटर्मिनेशन, जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन, और जो डिटर्मिनेशन है प्रभुपाद बोले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, भक्ति का एक बहुत बड़ा अंग है, जिसकी वजह से व्यक्ति भक्ति में रह सकता है या तो फिर समस्या आने से वो छोड़ के जा भी सकता है। एक प्रभुपाद जब थे ना, उनका कई सारे भक्तों को हरि नाम करने के टाइम जेल में डाल दिए, तो प्रभुपाद बोले ठीक है आपको जेल डाले, जेल में प्रचार करो। तो चार पांच लोगों को डाले थे भक्तों को, तो वो प्रचार किए तो उधर कई हजार संख्या के भक्त बन गए संकीर्तन किए। तो बोले अरे ये तो हमको समस्या हमारा था कि बाहर कीर्तन कर रहे इसलिए डाले थे, अभी तो इधर ज्यादा बड़ा प्रोग्राम करने लगे, चलो इनको बहुत जल्दी निकालो। तो जो प्रभुपाद के प्रति, प्रभुपाद का जो आज्ञा है उसको दृढ़ता से हम ग्रहण करें, तो प्रभुपाद बोल दिए कि प्रचार करो तो तुम्हारा, तुमको जेल से छुटकारा मिल जाएगा, तो जेल से छुटकारा मिल ही गया। तो दूसरा कि गिरिराज महाराज के बारे में हम बहुत बार सुन चुके हैं कि गिरिराज महाराज जब संपत्ति के मालिक थे, उनके पापा पिताजी जो थे करोड़पति थे, तो उनके पापा हमेशा से इसका कुछ बीमारी हो गया है, तो साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गए। गिरिराज महाराज को जब साइकियाट्रिस्ट पूछा कि देखो तुम ऐसा ऐसा पहले थे कि अभी है, तो वो सब गीता के श्लोक से दे रहे थे उत्तर। तो बोले तो डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट भाग भाग के आया उसके पापी पिताजी के पास, बोले देखो भाई ये परमानेंटली इन्फेक्टेड है, अभी मैं इसके साथ रहूंगा, इसको जल्दी लेके जाओ, नहीं तो मेरे को ऊपर भी इन्फेक्ट हो जाएगा, जन्म कर्म समय दिव्यम हो जाएगा मेरा, मैं भी उसके जैसे टकला बन जाऊंगा, इसको ये परमानेंटली, इसका कोई इलाज नहीं है। तो दृढ़ता ऐसे हो जाती है प्रभुपाद की किताब पढ़ने से और भागवतम का श्रवण करने से, अपने अंदर एक निश्चयता आ जाती है, एक डिटर्मिनेशन आती है। तो डिसाइसिवनेस, इमीडिएट एक डिसीजन लेने के लिए कभी कभी प्रचार में लेना पड़ता है, तुरंत समस्या कई सारे आती है, तुरंत डिसीजन लेके उसको मिटाना पड़ता है। जैसे कि प्रभुपाद मेक्सिको में जा रहे थे, साथ में श्याम सुंदर प्रभु जा रहे थे, तो सामने से एक नशे में चूर हुआ एक आदमी झूमते झूमते आया, तो श्याम सुंदर प्रभु विचार कर रहे थे क्या अभी प्रभुपाद शायद इसको प्रचार करेंगे, तो प्रभुपाद कुछ नहीं बोले, सामने चले गए, हाथ में छड़ी था धड़ास करके मार दिया, गिर गया आदमी। तो गिर गया तो श्याम सुंदर ये किस प्रकार का प्रीचिंग है। तो कभी कभी प्रचार में कई सारे बाधाएं आती है और उसको समस्या का समाधान करने के लिए तुरंत कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। तीसरा है कभी हतोत्साह नहीं होना चाहिए, तो डेस्टिनी जो है वो होने वाला है। प्रभुपाद ऑलरेडी बोल दिए कि चैतन्य महाप्रभु बोल चुके हैं हर घर में हर गांव में ये जो हरि नाम प्रचार होने वाला है, हम उसका जस्ट एक पार्ट है। उसमें अगर हम देख सकते हैं खड़ा होके कि जैसे अपना वसुदेव उधर क्रिकेट मैच दर्शक बन सकते थे, उधर कमेंट्री दे सकते थे, बोलते हैं अभी आकाशवाणी हो गया, अभी देखो हाथ में तलवार आ गया, बाएं हाथ में बाल है, अभी एक क्षण में सर्दन गर्दन अलग हो गया होने वाला, और हो गया बोल सकते थे। लेकिन दर्शक नहीं चाहते, वो प्रयास किए अपने भक्ति को बचाने के लिए और दूसरों को भक्ति देने के लिए फुल प्रयास किए। तो हतोत्साह नहीं होके आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद हर स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए भक्त को प्रचार में। और चौथा जो हम बोले थे दीक्षा के बारे में, तो भक्त के जीवन में दीक्षा का इम्पोर्टेंस महत्व क्या है, तो कृष्ण जन्म होते हैं कैसे कि पहले वसुदेव के हृदय में मन में प्रकट होते हैं, उसके बाद उनके मन से देवकी के मन में प्रकट होते हैं, और वो मन से कृष्ण उनके गर्भ में जाते हैं और जन्म लेते हैं। तो ऐसे एक गुरु और वैष्णव के हृदय में कृष्ण नाम के रूप में प्रकट होते हैं। और दीक्षा का अर्थ यह है कि वो भगवान श्री कृष्ण का नाम जब दीक्षा में शिष्य को देते हैं, तभी कृष्ण का प्रकट्य भक्त के हृदय में होती है। तो इस तरीके से ये जो गुह्यतम ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, वो हम देख सकते हैं कि जो वेद के द्वारा जाना नहीं जा सकता है और सारे समस्या का समाधान करने वाला है, तो ये साधु संघ और भजन क्रिया से समाधान हो सकता है। और प्रचार में सारे सारे समस्या का समाधान करने के लिए ये सब स्टेप उठाना चाहिए। हरे कृष्ण। प्रश्न है।